ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम तीन बार ओम शांति कहते हैं तो हमें दादी जानकी जी याद आते हैं। दादी जानकी जी हमेशा तीन बार ओम शांति कहते थे और फिर क्या कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और वास्तव में देखा जाए इन तीनों पहेलियों में सारा योग समाया हुआ है, योग की गहराई समाई हुई है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो जब कहते हैं योग की गहराई, तो कितनी गहराई है योग की, कई बार तो शब्दों में तो वर्णन की नहीं जा सकती है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार से उसकी डेफिनेशन मिलती रहती है। पर सरल शब्दों में तो बाबा ने हमें बता दिया, सबसे सरल शब्दों में, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। और जब बाबा कहते अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो ये कोई एक आध घंटे के लिए नहीं कहते हैं, परंतु जीवन ही योगी जीवन है। जीवन में ही वो आत्मस्थिति चाहिए, जीवन में ही बाबा की याद चाहिए। तो सदा का ये राजयोगी जीवन है, एक आध घंटे का योग नहीं है। तो जब हम कहते हैं सदा के लिए, हर वक्त, हर क्षण, हर श्वास, तो उसकी गहराई भी हम हर वक्त अनुभव कर सकते हैं। तो सहज से सहज भी है और बाबा कहते इसमें ही मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है। आधा कल्प से यह मन माया का गुलाम बन गया है, इंद्रियों का गुलाम बन गया है। माया के राज्य के आने से ही मन इंद्रियों के वश हो गया है। सतयुग में तो इंद्रियां हमारे वश थी ना, लेकिन द्वापर युग जैसे शुरू हुआ हम सब देह अभिमान में आ गए, तो देह अभिमान जो विकारों की जड़ है, उस जड़ के कारण हम खुद को तो भूले, ईश्वर को भी भूले और साथ साथ जीवन के लक्ष्य को भी भूले। तो जब शिव बाबा संगम पर आते हैं तो हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तो अगर हम कहें कि स्मृति स्वरूप होना, यही योग है, जो कल भी बाबा के ब्लेसिंग में था, वरदान में था। जब स्मृति स्वरूप बनेंगे तभी स्थिति बनेगी। स्थिति का आधार स्मृति है। और बाबा ने आकर के हमें कितनी स्मृतियां दिलाई है। और फिर बाबा कहते हैं हर कल्प कल्प में ये स्मृति दिलाता हूं, फिर तुम भूल जाते हो, फिर दिलाने आता हूं। जब स्मृति आती है तो चढ़ती कला हो जाती है, जब विस्मृति होती है तो गिरती कला हो जाती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, इस खेल का नाम ही है स्मृति और विस्मृति का खेल। जैसे दिन और रात का खेल कहते हैं, हार जीत का खेल कहते हैं, वैसे ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो जब बाबा आकर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, स्मृति दिलाते हैं तुम ये देह नहीं हो, आज भी बाबा ने कितनी बार याद दिलाया, तुम ये देह नहीं हो, ये देह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वापस घर, ये देह तो विनाशी है। आज भी बाबा ने कहा तमो प्रधान है, पतित है, विकारी है, तो जैसे यह सृष्टि है वैसे यह देह भी है, तो इसको तो भूलना है, छोड़ना है, ये तो जानते हैं, लेकिन जब तक हम छोड़े, जब तक ये छूटे, जब तक हमारे हिसाब किताब पूरा पूरे हो, तब तक तो इसमें ही रहना है। कर्मातीत बन गए, कर्म बंधन सब समाप्त हो गए, संपन्न संपूर्ण बन गए, तो फिर तो सहज ही ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन तब तक हमें देही अभिमानी भी रहना है, फिर विदेह स्थिति भी लानी है, अशरीरी भी बनना है, और जैसे बाबा ने आज का जीते जी मरना है, परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, तो फिदा होने के लिए, मरने के लिए हम भगवान के पास आते हैं, वो महान क्षमा पर आते हैं। और अगर कहें तो यही सारा योग है। तो योग केवल कुछ घंटे बैठ करके लगाने का नहीं है, लेकिन सारा जीवन ही योगी जीवन है। तो इसलिए जब हम कहते हैं योग की गहराई, तो योग की गहराई अर्थात सबसे पहले हम अपने मन को देखते हैं, हमारे क्या क्या विचार मन में आते हैं, क्या वो विचार सचमुच श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मन ही तो हमें बाबा से मिलाएगा। जैसे गीता में आता है अर्जुन को, जब भगवान ने कहा हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, तो जब मन को मेरे में लगाओ कहा, तो अर्जुन के आगे तो बहुत समस्याएं थी, तो यही शिकायत की ये मन कैसे लगे, मन तो चंचल है। तब भगवान ने उनको दो कदम बताए, ये भगवान ही कह सकते हैं, जिन दो कदमों पर चलकर मन ईश्वर में लग सकता है। और वो दो कदम क्या बताए, एक तो कहा वैराग्य और दूसरा कहा अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन मेरे में लग सकता है, और अगर वैराग्य नहीं और अभ्यास भी नहीं करते तो मन नहीं लगेगा। और वैराग्य के लिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं, छोड़ो नहीं लेकिन भूलो, भूलेंगे भी तब जब सचमुच वैराग्य आएगा। और वैराग्य और कैसे आएगा, जब ये देखेंगे सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को भी यही दिखाया, शमशान सब मरे पड़े हैं, इनका ऐसा ही अंत होना है। परंतु मोह के वश होने के कारण वो ये सब समझ नहीं सका, और सारी गीता का सार यही है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। और यही वास्तव में योग है। तो मन एक शिव बाबा में लगे और दूसरा न कोई, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, यही योग की गहराई है। अगर हम गीता को भी देखें, गीता में जब भगवान ने कहा ये इन सब को मारो, फिर कहा कि तुम मार तो सकते नहीं हो, लेकिन इनको आत्मा समझो, आत्मा तो मरती नहीं, बाकी देह तो है ही विनाशी। तो इसलिए योग की जो पहली गहराई है कि वो आत्मिक स्थिति हमें बनानी होगी, देही अभिमानी स्थिति बनानी होगी, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते वो देही अभिमानी स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा को जैसे ये ज्ञान मिला, शिव बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, सबको आत्मा देखो। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे प्रैक्टिस की आत्माभिमानी स्थिति लाने के लिए? नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूं, जिसको भी मैं देखता हूं आत्मा, यशोदा आत्मा, राधिका आत्मा, बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, यशोदा आत्मा, राधिका आत्मा, बाबा की बहू राधिका, ब्रिज इंद्रा दादी बाबा की लौकिक में बहू थी, बहुत मोह था, दोनों में बहुत मोह था बाबा का, परिवार था ना उनका। लेकिन वो मोह कैसे नष्ट किया, जब ये देखा कि इनको ये आत्मा है, आत्मा है। तो योग की गहराई के लिए पहली स्टेज यही है, देही अभिमानी स्थिति, अर्थात चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सबको आत्मा रूप में देखना, हदों में नहीं आना। आत्मा रूप में देखना माना सब हदों से पार। ऐसे नहीं कि मुझे सबसे प्यार है लेकिन फलाने से प्यार नहीं, सबसे प्यार, एक को छोड़कर सबसे प्यार नहीं, या एक देहधारी के लिए प्यार और बाकी के लिए नफरत, वो भी नहीं। क्योंकि जब एक शिव बाबा से प्यार है तो सबसे प्यार हो जाता है। जैसे पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं है, बीज को पानी दिया तो सब पत्तों को मिल जाएगा। तो वो आत्म अभिमानी स्थिति और शिव बाबा से अति प्यार, ये हमारे मन को स्थिर करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, वो आत्म अभिमानी स्थिति कैसे आए और सबको भी उसी रूप में देखें, हदों से पार चले जाएं, एक से प्यार रखते हैं तो सबसे प्यार हो जाता है। कोई भी हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, ऐसे तो नहीं मनुष्यों से प्यार है जानवरों से प्यार नहीं है, जानवरों से भी प्यार, वो भी तो है, तो परमात्मा की चेतन रचना। इसीलिए जड़ चेतन से प्यार, केवल चेतन ही नहीं जड़ से भी प्यार, प्रकृति से भी प्यार, तो सब हदें खत्म हो जाती है। और योग के लिए यही जरूरी है। तो जब कहते हैं क्या करें, मन भटकता है, मन भटकता है, तो कई बार हम सोचते हैं मन भटकता है तो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भटकता है। या तो व्यक्ति में भटकेगा, व्यक्ति, और व्यक्ति माना कोई संबंध, या तो कोई वस्तु में भटकेगा, और वस्तु माना थोड़ा लोभ, व्यक्ति माना मोह लोभ। तो व्यक्ति वस्तु, और वस्तु से ऊपर फिर वैभव, चाहिए चाहिए चाहिए, ये वैभव। क्योंकि जीवन यापन के लिए कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, आवश्यकता हमारी कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए बाबा कई बार कहते ना, भील लोग क्या खाते हैं, रोटला और चटनी, ज़्यादा नहीं खर्चा है पेट के लिए। पर आप पेटियों के लिए तो कितना भी कर लो, सब कम लगता है। इसलिए व्यक्ति वस्तु वैभव, अच्छा चलो और न सही तो घटनाएं, जीवन में कितनी घटनाएं घटती है, वो घटनाएं याद आती है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। फिर स्थान, आप जहाँ जहाँ गए या जहाँ नहीं भी गए लेकिन आपको उनका पता है, तो वो उन वहाँ मन चला जाना, व्यक्ति वस्तु वैभव, स्थान घटनाएं, या जीवन में जो परिस्थितियाँ आपके आई, उन परिस्थितियों को याद करना, जो अभी है नहीं, अभी तो पूरा हो गया, लेकिन वो परिस्थितियाँ उस समय बहुत कठिन थी, बहुत ही जटिल थी, और कैसे आप उसमें से पार हो आए। हाँ, अनुभव वो आपके जीवन का अमूल्य है ज़रूर, जो आप दूसरों को शेयर कर सकते हो। हाँ, कई बार होता है ना, अनुभव सुनाओ, तो अनुभव में ये सब बातें शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी वो अनुभव कराया जाए, और जो परिस्थितियां आई उनसे हम पार हो जाएं। तो इन सब व्यर्थ बातों से दूर होने लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, बिंदु बन जाओ, बिंदु, बस बिंदु बन जाओ, मैं बिंदु हूँ, इसको बाबा कहते हैं डॉट। और अगर फिर भी विस्तार हो रहा है, मन भटक रहा है, तो एक है डॉट और दूसरा है नॉट। हाँ, बाबा बताते हैं, नहीं, एक सेकंड में ब्रेक लग जाए, पर वो तब होगा जब इतना वैराग्य हो, आप मोए मर गई दुनिया, मनुष्य मर गया उसके लिए दुनिया मर गई। और उसके लिए आज बाबा ने कहा जल मरना, फिदा होना। तो फिदा होना, मरना, बाबा बार बार याद दिलाते हैं, तुम्हें जीते जी मरना है। तो ये प्रैक्टिस भी योग की गहराई है। तो कहते व्यर्थ संकल्प आते, व्यर्थ संकल्प आते, क्योंकि मरे नहीं अभी तक। ये दुनिया का चकाचौंध आकर्षित करता है, और बाबा कहते ये सबको मरा हुआ देखो, ये सब नष्ट होने वाला है। अर्जुन को यही कहा ना, हे अर्जुन, ये सब नष्ट होने वाला है, सब खत्म होना है। तो बेहद का वैराग्य जब बाबा कहते हैं, वो एक कदम है योग की गहराई के लिए। और फिर उसके बाद स्वमान, वो वैराग आ गया तो आखिर कहाँ पहुंचे, क्या सोचना है। तो अर्जुन को यही कहा ना भगवान ने, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, अपने स्वमान में रहना। गीता में तो आता है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो बाबा भी हमें याद दिलाते, तुम कौन हो? तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम सेना हो, तुम माया पर विजय पाने लिए मैदान में खड़े हो, भागना नहीं है। तो जब ये अंदर में निश्चय बैठता है, मैं कौन हूं और फिर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, ये भी योग की गहराई है। मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। तो जिसका साथी भगवान है उसको क्या आंधी तूफान रोकेगा? तो मैं कौन, मेरा कौन? तो जब ये अंदर में निश्चय और नशा है तो दुनिया तो मरी पड़ी है, कोई नहीं चाहिए। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, एक बच्चा इतने बड़े मेले में है तो पिता कहता है, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, गुम हो जाओगे, मेरा हाथ पकड़ो। तो बेटा कहता है, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं पकड़ूंगा तो शायद छूट जाएगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो आप पकड़ेंगे तो मजबूत होगा वो हाथ, तो मेरा हाथ भी पकड़ में सही आएगा। तो किसने मेरा हाथ पकड़ा है? भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। पहले हमने पकड़ा उनका हाथ या भगवान ने मेरा हाथ पहले पकड़ा? हम तो भटके हुए थे, आज भी बाबा ने कहा ना, भटके हुए थे, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, भक्ति में कितना ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा। और जैसे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कितना भाग्यशाली बन गया। तो मैं अपना स्वमान और फिर बाबा के प्रति इतना अंदर में सम्मान, ये योग की गहराई है। और सम्मान शब्द का उसमें प्यार भी आ जाता है, जहाँ प्यार है वहाँ सम्मान भी है, जहाँ सम्मान है प्यार है तो उन जैसा बनने का भी पुरुषार्थ होता है। तो जब ये अंदर में बुद्धि में आता है तो नशा चढ़ता है, और जब नशा चढ़ता है तो और सब शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। दुनिया में नशा क्यों करते हैं? सब दुखों को भूलने के लिए, दुख दर्द भूल जाए तो नशा पीते हैं, क्या क्या करते हैं। तो भगवान ने तो हमें उन नशों से तो छुड़ा दिया, लेकिन सदा नशा पीते रहो, मैं कौन मेरा कौन का, यही सच्चे योगी के लक्षण है। और जब ये जीवन में आ जाए तो अपने आप भी सब बातें भूल जाती है। कई लोग कहते हैं, नहीं ये ब्रह्मा कुमारियां तो पागल है, पागल भी कहते हैं, तो हम कहते हैं दुनिया पागल है, भगवान को कोई नहीं जानते, वो पागल है, नास्तिक है। लोग कहते तुम लोग नास्तिक हो, और हम क्या कहते हैं, हमने तो भगवान को जाना है, पहचाना है, उनके बने हैं, उन्होंने हमें अपना बनाया है, हम तो उनसे वर्षा ले रहे हैं, विश्व का मालिक बन रहे हैं, और तुम तो ढूंढते ही रहो। तो नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, हम अभी जान गए हैं। तो इसीलिए कई समझते इनको तो अपना नशा है, हम कहते क्यों नहीं नशा है, ये नशा कल्याणकारी है, ये सब अन्य नशों से हमें दूर कर देता है। तो जब ये अंदर में निश्चय और नशा हो तो हमें और कोई याद नहीं आएगा। और फिर हम ये सोचते हैं, बाबा हमारे लिए आया है, हमारे लिए आया है, अगर हम ना होते तो बाबा क्यों आता? हम बाबा के पास आए हैं या बाबा हमारे पास आए हैं, बाबा ने, बाबा पहले हमारे पास आए, हमको तो पता ही नहीं था, इसलिए बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है तो और बड़ा नशा, किसने हमारा हाथ पकड़ा है। ये योग की गहराई है। और जब उस नशे में रहते हैं तो हमको और कुछ दिखाई नहीं देता है, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, ये सब मरे पड़े हैं। फिर जब अर्जुन को भगवान ये कहते हैं कि तुम इस युद्ध में अगर विजयी बने तो तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे, अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है, तुमको मनुष्य से देवता बनना है, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से कोई देवता बने, बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ये तो बन जाएंगे, और वो भी क्या गारंटी है कितना जिएंगे, इस जन्म का ही है केवल, अभी रिटायरमेंट हो गई तो खत्म। और बाबा तो 21 जन्मों के लिए देने आए हैं, तो ये भी एक बड़ा नशा है, भविष्य का भी नशा है। मनुष्य तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे करके भी हमें कितना निश्चिंत कर दिया है, जो होगा कल्याणकारी होगा, जो हो रहा है नथिंग न्यू, जो हो रहा है वही सही है, इसलिए प्रश्न भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं, न दुख न दर्द न चिंता न भय, कुछ भी नहीं। वो स्थिति है योग की गहराई। मेरा तो एक दूसरा न कोई, जब ये एक नशा अंदर में चढ़ गया, सच्चा संग मिल गया, तो और कहां बुद्धि जाएगी। तो योग की गहराई का अर्थ ये नहीं है कि बस कुछ मंत्र बोलना, बाबा यहां तक कहते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ये भी नहीं कहना है, तुम्हारा तो अजपा जाप है, कुछ जपना नहीं है। हम नयों को कहते हैं ना, मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, चलो जाप किया, फिर उनको गिनती मिलती है इतनी बार जाप करना है, तो गिनती मिलने के कारण वो गिनती को ही याद करते रहते हैं, अभी 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 10000 हुआ। अब गिनती से योग हुआ तो शिव से तो योग हुआ ही नहीं। फिर बाबा कहते कोई पत्नी, कोई स्त्री होती है, पति से बहुत प्यार है, तो उसको कितना याद करती, पर गिनती करती है क्या, कितनी बार मैं अपने पति को याद करती हूँ, उसको और कोई सुध-बुध है ही नहीं। आज बाबा ने सत्यवान सावित्री की कहानी बताई, मालूम है ना कर कहानी है, सत्यवान सावित्री की कहानी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सार उसका यही है कि सत्यवान के लिए पता था अभी ये शरीर छोड़ेगा, लेकिन सावित्री इतनी दृढ़ थी कि इनकी आत्मा को मैं वापस बुला लूंगी, तो धर्मराज से भी उसने कैसे युद्ध किया, मानो आर्ग्यू किया, कई बातें हैं उसमें, बहुत गहरा, बहुत बातें हैं कहानी में। आखिर हाँ, धर्मराज ने उसकी आत्मा को वापस भेज दिया, आत्मा को वापस भेज दिया, माना उसको मरने, वो मरने नहीं दिया सावित्री ने, आत्मा वापस आ गई। तो कहने का भाव है कि वो तो चलो फिर भी एक दिन तो शरीर छोड़ेगा, लेकिन हम तो सच्चे परवाने हैं, हम तो मर मिटने के लिए आए हैं, घर जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो और भी ऊंचा नशा है। आप मोए मर गई दुनिया, मेरा कोई नहीं। यही योग की गहराई है। देह को देखते हुए भी नहीं देखना, केवल जाप नहीं करना, परंतु एक की लगन में रहना, वो सत्यम शिवम सुंदरम। कई बार कहते हैं ना, कौन सी चीज आकर्षित करती है? जो सच्ची चीज है, सत्य है, आपके आगे सच्चा सोना भी हो और नकली सोना भी हो, नकली सोना बहुत आकर्षित करता है, असली सोना इतना चमक नहीं भी होगी उसमें, परंतु बताते ये असली है ये नकली है, तो किसके तरफ आकर्षण होगा, असली तरफ या नकली तरफ? वो चमक रहा है इसीलिए ये चाहिए, नहीं, जो असली है, जो सत्य है, सत्य की तरफ आकर्षित होना होते हैं। सच्चा घी चाहिए, सच्चा घी, मिलावट वाला नहीं। तो सत्यता पर आकर्षण है, झूठ पर नहीं। तो शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्यम, वो सत्यम है, वो सत्य है। सत्य माना अविनाशी है, सत्य माना अपरिवर्तनशील है, सत्य माना नित्य है। तो जब उस नित्य अपरिवर्तनशील अविनाशी से दिल लग गई, तो फिर ये विनाशी से क्या आकर्षण? वो सत्यम है, वो शिवम है। शिवम माना कल्याणकारी, दाता है। दाता मिल गया तो फिर हमको और क्या चाहिए? वो कहानी बताते ना कि एक राजा ने ऐलान किया कि मेरे पास बहुत चीजें हैं। प्रजा को कहा कि आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए उस पर हाथ रखो, वो आपकी चीज हो जाएगी। तो बहुत देर आए, सब आकर्षित हुए चीजों पर, हर एक ने एक एक चीज पर हाथ रखी और वो राजा ने उसको दी। पर एक छोटी सी बच्ची आई, अब उसको राजा ने कहा तुमको जो चाहिए लो, लेकिन वो देखती रही देखती रही, कहीं भी उसकी आंख नहीं डूबी, कहीं भी नहीं डूबी जहां हाथ रखे और राजा उसको देवे, वो घूमती रही घूमती रही। आखिर राजा ने कहा कुछ तो पसंद करो, आपको क्या चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कोई भी चीज पसंद कर लो। तो उस बच्ची ने क्या किया, राजा को ही हाथ लगा लिया, राजा ही मिल जाए। अभी राजा मिल गया बाना, सब कुछ मिल गया, राजा मिल गया ना, जो दाता है वो ही मिल गया, तो और क्या चाहिए? वो चीजें क्या है, तो सब विनाशी है। तो भगवान मिला, सब कुछ मिला, अंदर में वो नशा हो, तो सत्यम के साथ शिवम है, दाता है, कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो वो मेरा सच्चा साथी है। ये सब योग की गहराई है। और वो सुंदरम है, सबसे सुंदर है। मनुष्य आत्माओं का आकर्षण तो इसलिए भी होता है उनकी चमड़ी की सुंदरता पर, पर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चमड़ी की सुंदरता कितनी होती है। कई बार बताते हैं ना, कोई मिस इंडिया बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस यूनिवर्स बनी होगी 50-60 साल पहले, 70-80 साल पहले, और अभी वो जिंदा है, लेकिन अभी कैसे हो गई होगी, 80-90 साल की बूढ़ी कैसे होगी, और उस समय 20-22 साल की या जो भी होगा, कितनी यंग होगी। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो नंबर वन आई, पर अभी तो देखो झुड़ियां आ गई, तो इतना अंतर पड़ गया। तो वो सुंदरता कैसी सुंदरता, जो विनाशी है। और बाबा सर्व गुणों का सागर, वो सुंदरता, तो उस सुंदरता को देखते रहो, मनुष्य चमड़ी की सुंदरता के पीछे घायल होते हैं, पागल होते हैं। तो भगवान की सुंदरता कितनी प्यारी है, एक एक गुण की सुंदरता, छोटे बच्चे प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि स्वीट है। तो परमात्मा जैसा स्वीट कौन होगा? कहते हैं ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, तो वो स्वीटेस्ट है। हमारी दादी प्रकाशमणि थी, बाबा की मुरली में आता था ना, बाबा कितना स्वीट है, कितना मीठा है। तो दादी सुनाती थी मुरली, इतना मीठा मीठा है। तो दादी कहती थी, बाबा तुम कितने मीठे हो, मैं खा जाऊं, ऐसे करती थी दादी, खा जाऊं। हाँ, मीठी चीज क्या होती? गुलाब जामुन देखा क्या होता है? हाँ, मुंह में पानी आता है, खा जाऊं तो खा जाऊं। इतना प्यार से दादी मुरली सुनाते सुनाते बाबा से बातें करती थी। तो इसीलिए सुंदरम, इनसे सुंदर कौन हो सकता है? तो कहाँ आंख डूबेगी, कहीं डूब ही नहीं सकती है। बस ये नशा रहे, कौन मिला है मुझे, और फिर मैं कौन, मेरा कौन, फिर मुझे क्या करना है? भगवान ने मुझे बहुत बड़ा कार्य दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो अगर मेरा उनसे प्यार है, उस जिम्मेदारी को निभाना है, सारे संसार का परिवर्तन करना है। कल बाबा ने कितना बड़ा काम दिया, संदेश देना है, कहाँ वैश्याओं को संदेश देना है। तो कल जब मुरली पढ़ रहे थे, वैश्याओं की सेवा करनी है, तो हमें बुरहानपुर के गोवर्धन लाल भाई याद आ गए। साकार बाबा के समय बुरहानपुर के गोवर्धन लाल भाई थे। बाबा ने जो कहा उस श्रीमत का पालन करते थे, बहुत ही पक्के बाबा के बच्चे। तो बाबा ने जब कहा वैश्याओं की सेवा करनी है, उसने बहुत कोशिश की वैश्याओं की सेवा करने की, लेकिन उनके यूनियंस होते हैं, उनके बहुत कुछ होते हैं, तो गवर्नमेंट फिर कहेंगे कि हमको नौकरी दो, ये करो, बहुत बातें थी। लेकिन बाबा ने कहा है, और बाबा कहते हैं पुरुषों को नहीं जाना है, माताओं को जाना है, बहनों को जाना है, तुम शिव शक्ति को जाना है। उनका जीवन कितना बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये भी बाबा कहते वैशालय बन गया ये कलयुगी दुनिया, इनके कारण है। परंतु सेवा के लिए जो बाबा कहते हैं, ये जिम्मेदारी बाबा ने दी है, सारे विश्व को संदेश देना है, जो मिले उनको बाप का परिचय देना, इनसे ऊंचा ऊंची सेवा और कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये भी नशा है, मुझे भगवान ने सेवा दी, हम खुदाई खिदमतगार है, ये भी योग की गहराई है। इसलिए केवल एक जगह बैठकर ही नहीं करते, तो देही अभिमानी स्थिति भी हो, फिर विदेही स्थिति भी हो। विदेही स्थिति का मतलब क्या है? राजा जनक की तरह वो विदेही स्थिति, इतना बड़ा महल होते हुए भी कहीं भी आंख नहीं डूबती, सब मरे पड़े हैं। हाँ, मैं कई बार अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ, सारे यूरोप का टूर किया मैंने, तो स्विट्जरलैंड गई थी। तो स्विट्जरलैंड में भी बाबा के बहुत सेंटर्स हैं। तो वहाँ एक स्थान पर गई थी, तो स्विट्जरलैंड जो देश है, छोटा सा देश है, लेकिन पहाड़ और ये सरोवर, ये क्या बोलते हैं, लेक, तो लेक और पहाड़, वही बहुत सुंदर देश है। और इतनी झील जो है वो इतनी साफ सुंदर। तो मैं एक सेंटर पर गई, और वो सेंटर बिल्कुल जैसे नक्की झील है ना, उसके सामने कई लेक व्यू होटल है, बस वहां से देखो लेक ही दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देते हैं माउंट आबू में भी। तो वो सेंटर था बिल्कुल, और बहुत उनका सुंदर वो टेरेस था। तो हम गए, तो चाय दी, तो वहीं बैठे, इतना हरियाली, इतनी बात मत पूछो, इतना साफ पानी, बहुत सुंदर। तो मैंने ऐसे ही उस भाई को कहा, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। तो वो जो भाई था जो सेंटर संभाल रहा था स्विट्जरलैंड में, तो वो मेरी मुझे देखता ही रह गया, मुझे ताकता रहा, शक्ल देखता रहा। तो तो मैंने सोचा पता नहीं मैंने गलत तो कुछ बोला नहीं है, क्यों ऐसे मुझे ऐसे ताक रहा है, ऐसे देख रहा है। तो मैं तो और ये अच्छी बात कही तो मुस्कुराना चाहिए ना, पर मुस्कुराने की बजाय वो मेरी शक्ल ही देखकर ताक रहा, आश्चर्य खा रहा है। तो मैंने कहा क्यों आश्चर्य खा रहे, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। पर तो पता है क्या जवाब देता है, वो सब देख कर कहते ये तो सब विनाश होने वाला है। सीधे ही कह दिया ये तो सब विनाश होने वाला है। माना बाबा की मुरली में जब आता है ये देखते हुए नहीं देखो, सब खत्म होने वाला है। इतनी उपराम बुद्धि थी उसकी जो बात मत पूछो, बाबा के प्रति इतनी लगन। अब मैं तो पहली बार गई थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उनकी स्थिति मैंने देखी कितना उपराम था। तो बाबा भी हमको क्या सिखाते हैं, बस एक बाबा को देखो। और इतना योगी आत्मा जो बात मत पूछो, तभी उसको दादी ने वहां रखा था स्विट्जरलैंड में सेवा करने के लिए। आता है मधुबन जब आता है, बिल्कुल ऐसा योगी आत्मा। बहुत विदेश के कई भाई बहनों से जब वो मिलते हैं, इतने जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, बहुत आत्माएं हैं। भारत में तो है ही, लेकिन विदेशों में भी दूसरी कल्चर, दूसरा सभी संस्कृति, सब कुछ अलग, लेकिन कैसे बाबा के पक्के बच्चे हैं, अभी तड़प रहे हैं आने के लिए। अब उनको कहा अक्टूबर से डबल विदेशी आएंगे, इतना प्राइस हाई हो गई है हवाई जहाजों की, एयर टिकट डबल ट्रिपल फ्लाइट की टिकट्स हो गई है, लेकिन वो कहेंगे मधुबन आएंगे, हम मधुबन आएंगे। दो साल तक नहीं आए ना कोरोना के कारण, तीन साल भी कईयों को हो गया। कई देश तो बहुत दूर है, इतने दूर है जो इतनी प्राइस है टिकट की, जो बड़ा मुश्किल है कईयों के लिए। तो फिर वहाँ पर फिर लंदन से बहनों को भेजा है राखी के लिए विशेष। तो देखो बाबा के प्रति वो लगन, क्योंकि वो अति सुंदर है। उनकी सुंदरता के आगे ये दुनिया की सुंदरता क्या है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्यों बाबा कहते सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि सुनाई देता है ना, कान तो बंद नहीं है, सुनाई देता है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुनते हुए न सुने। किसकी जुबान को हम रोक नहीं सकते हैं, किसको को ऐसे मत कहो, कहेगा कहूंगा कहूंगा। तो बाबा कहते हैं एक कान से चलो सुना भी दूसरे कान से निकाल दो, रिएक्ट नहीं करो, क्योंकि हम तो सब सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम को ही याद करना है। तो विदेही राजा की तरह रहो, देखते हुए नहीं देखो, मेरा कुछ नहीं है। बाबा परिवार में रहने वालों की कितनी महिमा करते हैं, बहुत महिमा करते हैं, सच्चे ट्रस्टी है। और सच्चे ट्रस्टी होकर के रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो वो भी बाबा के भंडारे से खाते हैं, वो भी बहुत ऊंच पद पाएंगे। तो ये सब योग की गहराई है। तो विदेही स्थिति राजा जनक की तरह सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर न्यारे और प्यारे, क्योंकि एक बाबा दूसरा ना कोई। अर्जुन ये दिखाते ना, राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, सेकंड में जीवन मुक्ति, तो इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, पर सेकंड में जीवन मुक्ति, तो सेकंड में ज्ञान चाहिए जीवन मुक्ति का। तो सेकंड में ज्ञान क्या है, वो घोड़े पर चढ़ रहा था, तो एक पैर घोड़े पर था, एक पैर वो घोड़े के जो सैडल होता है जहाँ पांव रखते हैं घोड़े पर, उस पर था। उसी समय अष्टावक्र ने पूछा आप राजन कहाँ हो, कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो। अब क्या कहे, घोड़े पर हूं या धरती पर हूं, दोनों पर है और दोनों पर नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से तो धरती पर नहीं है और पूर्ण रूप से घोड़े पर भी नहीं है, एक पैर धरती पर है एक पैर घोड़े पर है। तो हूं और नहीं हूं, यही है जीवन मुक्ति की स्थिति एक सेकंड में, हूं और नहीं हूं। जैसे आज बाबा ने कहा अशरीरी, इतना दुख, इतना दर्द, इतना जो कुछ भी, अशरीरी बन जाओ। तो विदेही स्थिति होगी तब अशरीरी बन सकेंगे, और वो अशरीरी स्थिति एकदम जैसे देह है ही नहीं, यही हमें सब दुखों से दूर करेगी और एक बाबा की लगन में मगन करेगी। सब कुछ समेट करके बस बिंदु बन जाओ और उस बिंदु में सिंधु की शक्ति अनुभव करो, मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूं, इतना तेज है मेरे सामने, जो कुछ विकार आए भस्म हो जाए। तो सेवा भी करनी है, साथ साथ योग में भी रहना है, साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभानी है। ये सब योग के अंतर्गत आता है, ना कुछ छोड़ना है पर कहीं फंसना भी नहीं है, और नया जोड़ने की तो बात ही नहीं है, अभी नया तो बिल्कुल जोड़ना ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है नया जोड़ने की। जहां रग जाए, ममत्व जाए, फंस जाए, जो है वो बंधन खत्म करने हैं। इसी को कहेंगे कर्मातीत अवस्था, जो हमने दादियों में देखा कैसे न्यारी होती गई, न्यारी होती गई, न्यारी होती गई। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, क्या नहीं दादी इन्होंने सेवा की होगी, लेकिन न्यारे होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, अशरीरी स्थिति का अनुभव करते 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 कर्मातीत बन गए, संपन्न बन गए। तो हमें भी तो आखिर यही बनना है ना, यही बनना है ना, सोशल सर्विस ये विंग के आए हैं और भी आए हैं, तो सेवा भी करनी है और बैलेंस पूरा रखना है, तो ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ब्लेसिंग मिली माना आपका पुरुषार्थ आधा हो गया, दुआओं से जी रहे हैं, सबकी दुआएं ले रहे हैं, सबकी दुआएं, किसी की भी बद्दुआ न हो। तो इसीलिए यही लगन, इसी में मगन रहना है, न्यारा भी और प्यारा भी, तो ब्लेसिंग मिलती रहेगी और आप उड़ते रहेंगे। तो उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है, बस ये एक ही लक्ष्य रखना है। चलो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उस गहराई का अनुभव करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब सब बातों को समेट लो एक सेकंड में, एक सेकंड में। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, सब समेट लेता है, इसी प्रकार मैं आत्मा सब समेट लूं और बिंदु बन जाओ, एक बिंदु आत्मा, और मैं आत्मा बिंदु, मुझ में सिंधु जितनी शक्तियां हैं, मैं बाप समान हूं, अति न्यारी हूं और बाप की प्यारी हूं। अति शुद्ध हूं एक बेदाग हीरा हूं, चमकता हुआ हीरा, बेदाग हीरा, सर्व गुणों की चमक मुझ आत्मा में है। उस चमक को फैलाना है। एक की लगन में मगन रहना है। एक व्रता हूं, एक से ही सर्व संबंध है। एक की ही लगन में मगन है। सत्यम शिवम सुंदरम अति सुंदर। हमारे प्यारे शिव बाबा, जो अति प्रिय है, शुद्ध और पवित्र है, और मैं आत्मा उसकी संतान हूं। शिव बाबा से ही मैं आत्मा सर्व प्राप्तियां कर रही हूं। एक से ही सर्व संबंध है। उस बिंदु में सिंधु को मैंने पहचान लिया। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया। जो सोचा था वो सब कुछ मिल गया। सर्व संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, भरपूर हूं। कितनी शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। सर्व हदों से पार, एक बेहद स्थिति है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो पाना था वो बाबा से सब कुछ पा लिया। कितना आनंद है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे बाबा। मेरा मन बिल्कुल शांत है।